ओम शांति। ज्यों ज्यों 18 जनवरी समीप आता है, ब्रह्मा बाबा की स्मृति और भी तीव्र होती जाती है। कई यादें, बिसरी हुई यादें भी फिर से स्मृति पटल पर आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ अनुभव हम आत्म प्रकाश भाई से सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए 50 साल हो रहे हैं और वो भाई बहने जो उसके पहले ज्ञान में आए थे वो तो अब गिने चुने रह गए हैं। कुछ तो अगले जन्म में चले गए हैं लेकिन अभी भी कुछ गिने चुने हैं और उनमें से हमारे वरिष्ठ भाई आत्म प्रकाश भाई हैं, जो मात्र 20 वर्ष की आयु में बाबा के पास आए और बाबा को देखते ही कैसे अपना जीवन समर्पित किया, पीछे बिल्कुल मुड़ के नहीं देखा, बाबा की श्रीमत पर पूर्ण रूप से चले। और इनका केवल अकेले नहीं, इनका पूरा परिवार, इनकी भाई, इनकी बहन, बहन को आप जानते होंगे राज बहन, जो अमृतसर का सेवा केंद्र संभालते हैं, इनके माता पिता सभी एक साथ, और अधिक ये बताएंगे कैसे समर्पित हुए और बाबा ने उनको विभिन्न सेवाओं पर भेजा। इनकी लौकिक माता जी ने कुछ समय पहले ही 105 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। 105
जी,
आपकी लौकिक माता जी 105 वर्ष की थी। 111 लो और भी ज्यादा 111 वर्ष की आयु में आपने शरीर छोड़ा। तो और सारा दिन बस बाबा 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 के सिवाय और कुछ नहीं इनकी बुद्धि में था। तो ऐसे ही हमारे रतन है आत्म प्रकाश भाई, अब हम इनसे सुनेंगे बाबा के संस्मरण। आत्म प्रकाश भाई, इससे पहले मैं समझती हूँ एक गीत रखा जाए। मैं हल्दर भाई से निवेदन करूँगी आज के इस मौके पर ब्रह्मा बाबा का एक, उनकी याद का एक गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे हल्दर भाई।
ओ बाबा तेरी याद दिलाए तेरा मधुबन, ओ बाबा तेरी याद दिलाए तेरा मधुबन। जाने क्यों इतना मन को लुभाए, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन। ओ बाबा तेरी याद दिलाए तेरा मधुबन, तेरा मधुबन। कमरे में जैसे आज भी तुम मिल रहे हो बाबा, कुटिया में खत वो मोतियों से लिख रहे हो बाबा, बाहें पसा अब भी बुलाए तेरा मधुबन। जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन, ओ बाबा तेरी याद दिलाए तेरा मधुबन। न्यारा बनो प्यारा बनो मधुबन कह रहा, मधुबन ये मधु का वन है गहन अर्थ भरा, मीठा हमें ये बनना सिखाए तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन, तेरा मधुबन। ये शांति स्तंभ कहता है तेरी कहानी, सेवा में स्वाहा कैसे हो उसकी है निशानी, अव्यक्त फरिश्ता ये बनाए तेरा मधुबन, तेरा मधुबन। सारा जहां तुम्हारा है सभी तो तुम्हारे, मधुबन का तो भी अपने ही हाथों से सवारे, मधुबन को तो भी अपने ही हाथों से सवारे, मधुबन के बाबा तब ही कहता तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन, हो बाबा तेरी यादें दिलाए तेरा मधुबन, ओ बाबा तेरी यादें दिलाए तेरा मधुबन, तेरा मधुबन बाबा तेरा मधुबन। ओम शांति,
ओम शांति। हम सभी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों? हम सभी बच्चों को ब्राह्मण को स्वयं भगवान ने अपना बना लिया, चुन लिया, तो कितनी सारी दुनिया है इस वक्त 750 और भी अब वर्ग होंगे, कितनी जीव आत्मा इस धरती पर विचरण कर रही है, उसमें से हम थोड़ी है, लाखों है, 10 लाख 20 लाख कितनी होंगे, उनमें से चुन करके अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया, ब्राह्मण बना लिया, और केवल अपना ही नहीं बनाया, साथ साथ अपने किसी कार्य में लगा दिया, या और सौभाग्य। एक तो अपना बनाया, देखो कोई भी आप चीज लेते हैं, जाते हैं, लेके आते हैं तो किसी कार्य में लगाते हैं, तो भगवान ने भी हमको अपना बनाया, हम अपने को देखे, चुना इतनी बड़ी दुनिया में से और अपने किसी कार्य में या सेवा में लगा दिया, ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है देखा जाए तो। हमें भी ऐसे आज से कितने 62 ईयर हो गए होंगे शायद, 1957 की बात है, जब हम जिसे कहा 20 साल के होंगे, तब 20 साल के थे, तो जब यज्ञ की स्थापना हुई तब हमारा ये लौकिक जन्म हुआ 1937 में। तो 20 साल की यज्ञ की आयु थी, 20 साल की हम थे। तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, लौकिक मामा भाई कहते थे इंजीनियर बनेंगे, उन्हें पढ़ने भेजा, कोई फिकर फाका नहीं था, बड़े इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में ठीक पढ़ रहे थे। तो आप जानते एक हमारे भाई थे ओम प्रकाश जी, इंदौर जोन के डायरेक्टर इंचार्ज थे, जो शरीर छोड़ दिया 3 साल पहले, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे, हमारे साथ रूम था। उनको ये ज्ञान जो बाबा का ज्ञान है वो मिला हुआ था, वो हम उनको देखते थे, हमारे साथ साथ रूम थे, तो देख के उनसे अट्रैक्शन होती थी, कुछ नवीनता इनके अंदर है। हम पता है आपको, हमने बचपन में बड़ी भक्ति की थी, मुझे याद है हम 6 साल के थे बच्चे, मंदिर में जाकर एक टांग पर खड़े होकर के भी भक्ति करते थे, क्यों कि ध्रुव प्रहलाद की जगह के तरह हमें भी साक्षात्कार हो जाए, ऐसा था। और हमारे लौकिक फादर बड़े भक्त थे, यहां रहे, बाबा के साथ भी रहे, वो भागवत पुराण रामायण महाभारत गीता सब हमको सुनाते थे उर्दू में, सब मुझे याद था, ये सब बातें ज्ञान में आने से पहले सब बातें सुनी हुई थी, बैकग्राउंड था भक्ति मार्ग का। तो उनको मैं कहा, देखते थे तो कुछ लगता था ये कोई नया प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन वो ज्ञान सुन के आए थे थोड़ा कुछ 6-8 महीने पहले, वो देख रहे थे, बाबा कहते थे ब्राह्मणों का कार्य क्या है, जहां जाएंगे अपना ये ज्ञान सुनाएंगे, चाहे आप ट्रेन में आए, चाहे आप किसी संस्थान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये हमारा ब्राह्मणों का काम ही है कि ज्ञान सुनना और औरों को सुनाना, वो भी चाहते थे सुनाना। तो वो देख रहे थे मुझे कि ये व्यक्ति तो बहुत सिनेमा फैन है, बहुत सिनेमा देखते थे हम, बताएं आपको, दूसरे शहर में भी जाके सिनेमा देखने जाते थे, पटियाला से अम्बाला में, हम बताए नई पिक्चर आई है, बड़ा शौक था पहले हम देखे, तो वो देखते थे इसको कैसे ज्ञान सुनाएंगे हम। वो एक बार हमारे कमरे में आ गए, उन्होंने कहा माचिस चाहिए, मैं किस लिए कि हमें अगरबत्ती जलानी है। तो मैंने हमारे उस दिन में अटैचिस नहीं थी, ट्रंक हुआ करते थे बड़े बड़े, हमारे पास भी ट्रंक था, अभी भी है हमारे पास वो, तो हमने खोला, उसमें गीता पड़ी थी हमारी, गोरखपुर की गीता होती है ना, वो हमने हमें मिली थी पुरस्कार में, हम मैट्रिक में सारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे, पुरस्कार मिला था, हमने कभी पढ़ी नहीं थी, संस्कृत हमको ज्यादा इतनी नहीं जानते थे। उसने देखी कहा ये व्यक्ति जरूर धार्मिक है, तो बस वो लग गया हमें सुनाने के लिए आत्मा पर। मैंने कहा, वो कहे सुनाया पहला लेसन आप आत्मा है, हमने कहा हम तो आत्मा नहीं है, कैसे आप सिद्ध करके बताओ आप आत्मा है। कई 2-3 दिन तक इसी में लगे रहे, वो आओ कहे आत्मा है, मैं को मैं आत्मा नहीं हूं, अंदर समझते थे कि हम आत्मा है, क्योंकि भक्ति तो की हुई थी, आत्मा को मानते थे, यही वो कहते रहे आप आत्मा है। अच्छा, ऐसे करते करते 2-3 दिन तो बीत गए, एक दिन उसने कहा, लेकिन उनमें एक दिन मेरे से हाथ मिला लिया उसने, कहते आज के बाद आप सिनेमा नहीं देखेंगे, तो ऐसा हाथ मिलाया कि बहुत समय तक हमें तो देखा ही नहीं सिनेमा, बंद हो गया हमारा वो। तो उसने कहा, जब ये बोला कि अच्छा, उसने कहा आज आप मान जाओ कि आप आत्मा है, आत्म प्रकाश तो हम पहले ही थे। तो मैंने कहा हाँ भाई, आज आपने कहा है तो मैं मान लेता हूं, मैं अंदर से मानता था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई वॉज गोइंग ऑन। तो मैंने कहा जी आज मैं मान जाता हूं कि मैं आत्मा हूं, बस इतना मेरा कहना था कि मैं आत्मा हूं बस। एकदम वो जैसे वो चेंज आना शुरू हो गया, अब वो स्थिति बननी शुरू होगी, अनुभूति होनी शुरू होगी, लाइट, वो हल्कापन, बहुत खुशी, मैंने वो बहुत जैसे आई वॉज चेंज। इसी एक ही वर्षन से, इसी एक भी बात मानने से, उन दोनों में कोई ज्योति बिंदु की बात भी नहीं थी, कोई परमात्मा ज्योति बिंदु है या आत्मा ज्योति बिंदु, कोई आत्मा, बस आत्मा है। और कभी सोचते थे अंगुष्ठ सदृश, कहते थे अंगुष्ठ, तो हमने कहा जी हाँ मैं आत्मा हूं, मान लिया, बस ये कहते ही मैं आत्मा हूं माना, चेंज आया लाइफ में, शांति का अनुभूति हुई, खुशी, यानी हल्कापन महसूस हुआ कि मैं, यानी जब मैं बाजार में जाऊं तो पहले तो दृष्टि वृत्ति तो आप जानते हैं, काले स्टूडेंट थे सबको, ये भी उसके मस्तक में देखो, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, सबके मस्तक में देखना शुरू कर दिया ये, तो ये बड़ा खुशी का और बड़ी शांति का बड़ा अनुभव होना शुरू हो गया। क्योंकि आप जानते हैं उस समय तो सर्विस बहुत कम थी, 1957 में सेंटर भी कम थे, सेवा भी कम थी और बाबा भी फ्री थे कहना चाहिए, वो जल्दी पकड़ते थे, जैसे ऐसा समझता हूं फटाफट बाबा ने जैसे पकड़ लिया। मैंने कहा कमाल हो गया, एक छोटी सी बात समझने से इतना सब कुछ चेंज हो गया, तो इनसे और पूछो आपके पास क्या खजाना है। तो मैं गया उस कमरे में, बताओ जी और चीज बताओ क्या है आपके पास, कैसे है कर। उन्हें ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, कोर्स देना शुरू कर दिया, तो आत्मा है, परमात्मा शिव है। हम बताएं बहन और भाइयों, हमारा जो नॉलेज है ना बहुत वंडरफुल है, इतना वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल भी है, बुद्धिगम भी है और साइंटिफिक भी है, रीजनेबल भी है, इसको जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही रमणीक भी है और खुशी प्रदान करने वाला है। मैं तो ज्ञान में आया ज्ञान सुनकर के, आई टेल यू, अभी ना बाबा से मिले ना मम्मा से मिले, कितने नहीं मिले थे, ज्ञान ने ऐसा खींचा चुंबक की तरह के आनंद आ गया, बुद्धि का ताला खुल गया जैसे एकदम। मैंने कहा परमात्मा शिव है, हम पहले पढ़ते थे कुरुक्षेत्र में मैट्रिक में, तो हम जाते थे किताब लेके बाहर खेतों में पढ़ने के लिए, एक मंदिर था दुख भजनेश्वर उसका नाम था, अब भी है मंदिर वो, तो वहां पर वो शिवलिंग बना हुआ था और वो सांप उसके घूमते रहते थे, चेतन सांप भी घूमते रहते थे वो, हम कहते थे वो शंकर शिव शंकर एक चीज होती है वही उसका प्रतीक है। तो ये शिव शंकर परमात्मा शिव है, मैं आत्मा हूं और परम धाम के वासी हैं, जो जो वो सुनाते गए कुछ भी प्रश्न नहीं, सब बिल्कुल ठीक बुद्धि में बैठता गया, कोई हमारा प्रश्न नहीं था और दिन प्रतिदिन जो है खुशी का पारा चढ़ता चला गया। अब देखो लोगों को प्रश्न उठता है सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का के कितना है और हूबहू रिपीट होता है, मुझे बड़ा
आप ब्रह्मा बाबा से कैसे मिले वो,
हाँ वो बता रहा हूँ, ये भी अच्छा लगा। तो सारा ज्ञान सुन करके बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। तो मैंने कहा भाई उनसे कि हमें आप बताइए ये आपको ज्ञान मिला कहां से है, तो वो उन दोनों में क्या बाबा जो थे, बाबा मामा जो थे, सर्दियों के मौसम में यहां नहीं होते थे, या तो दिल्ली में होते थे या बॉम्बे जाते थे, वहां जाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बाबा मामा से मिलने के लिए जाओ, जिनके द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो हम पहुंचे पहले टाइम दिल्ली कैपिटल में, रात के 11 बजे पहुंचे जहां बाबा मामा ठहरे हुए थे रजौरी गार्डन में, वहां गए। तो सुबह हमें एक दादी लीला थी, लीला चटनी, वो अभी तो शरीर छोड़ दिया, वो हैदराबाद सिकंदराबाद में आदमी थी, वो माली, क्योंकि हम तो अकेले गए थे ब्राह्मणी, उन्होंने हमें बाबा मामा से पहले पहले मिलाया। तो हम बताएं बाबा मामा को देखते ही बहुत ही आकर्षण हुआ, ऐसा फीलिंग आई जैसे यही हमारे लौकिक परलौकिक अलौकिक सब कुछ हमारे यही है, ऐसी हमको बाबा मामा से फीलिंग आई। अब देख बाबा मामा से कैसे मिलते थे हम लोग, ऐसे नहीं कि कोई पहले भक्ति मार्ग में तो हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम सामने बैठे और आंसू बह रहे थे, क्यों बह रहे आंसू पता भाई, क्योंकि कलब के बाद 5000 वर्ष के बाद हम मिले थे, मिल रहे थे तो जाके बाबा की गोद में गए, तो जब बाबा आंसू बहते तो बाबा कहता मम्मा अब इनको संभालो, फिर मम्मा की गोद में गए। तो जैसे माँ बाप को मिलते ऐसे बाबा मामा से मिलने हुआ, तो देखा उस वक्त बाबा की एज उस वक्त 80 साल की होगी शायद, बाबा बैठे सीधे संदली पर स्ट्रेट, हम कहते हैं ना बाबा साधारण, मैं साधारण तन का आधार लेता हूं परंतु मैं तो नहीं समझता साधारण तन था, विशेष तन था, उनकी पर्सनैलिटी चुंबकीय, उनकी शेप सब चीज जो थी اتنی جیسے اٹریکٹیو تھی بات مت پوچھیے. تو اور ان کے تن من دھن سب میں وہ وشیش تھے دیکھا جائے تو. مما بھی ایسے بابا بھی ایسے. تب ان سے ملے گود لی. بابا کو پتہ نہیں معلوم تھا, پہلے پتہ تھا کہ یہ بچہ انجینئرنگ میں پڑھتا ہے. تو بابا نے پہلے پہلے ایک مہاواکیہ ہمارے پرتی اچارن کیے. اب آپ سن کے جو نیا نیا ابھی ہم 10-12 دن کے بچے تھے تو بابا نے کہا بچے انجینئرنگ میں پڑھتے ہو, 4-5 سال کا کورس ہے, بہت بڑا کورس ہے, بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. تو بابا نے بھرگو رشی تھی, بابا نے کہہ دیا بچے یہ پڑھائی تمہارے کام آنے والی نہیں ہے. بتائیے اس وقت ابھی نئے نئے میں ہوں, بابا جو ریئل بات تھی بابا نے میرے سامنے کہہ دی. ہمیں تو پہلے بار آگے تھا کہ بناج سامنے کھڑا ہے, تب بھی ایسا لگتا تھا بناج سامنے کھڑا ہے. اور بابا کہتا تھا سمے بہت تھوڑا ہے, ابھی بابا کہتا سمے بہت تھوڑا ہے. تو جب یہ بابا نے مہاواکیہ کے اچارن کے میرے پرتی کے بچے یہ پڑھائی جو ہے کام آنے والی نہیں ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے صاحب چھوڑو لمبی چوڑی پڑھائی کو, خرچہ بھی بہت ہے, پڑھائی دماغ بھی بہت دینا پڑتا ہے. اور زیادہ بار آگے آ گیا ایک دم. ہم جب واپس آئے پٹیالہ میں پڑھتے تھے, واپس آئے سنایا سارا انبھو ان سبھی کو امبالہ پٹیالہ میں. تو ایک ہم نے لیٹر بابا کو لکھا انگلش میں, اور بابا کا بھی 2 دن کے اندر انگلش میں جواب آیا. کیا لیٹر لکھا تھا میں نے, بابا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انجینئر کیا کرتے ہیں کنسٹرکٹ بلڈنگس اینڈ ڈیزائن بلڈنگس, بٹ آئی وانٹ ٹو بی اے کارنر ون آف دا اسٹون آف دا ہیوج ایڈیفیس وچ یو آر نیو ورلڈ وچ یو آر اریکٹنگ. ایک نئی دنیا کی جب بہت بڑا آپ محل بنا رہے ہیں, اس کا ایک میں بھی ایک تھوڑا سا پتھر بننا چاہتا ہوں. پھر لکھا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیزائن ہائی ویز اینڈ روڈس, بٹ آئی وانٹ ٹو رن آن دا ہائی وے گوئنگ ٹو پرم دھام دین گوئنگ ٹو گولڈن ایج. پھر ہمارے انجینئرنگ کے 2 سال اکٹھے ہوتے ہیں, میکینیکل بھی الیکٹریکل بھی سول بھی. پھر لکھا بابا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم ڈیزائن مشینری, بٹ آئی وانٹ ٹو بیکم بی اے پارٹ آف دیٹ کنگ اینڈ کوئن میکنگ مشینری وچ یو ہیو انوینٹڈ. برہما کماری بابا کہتے تھے برہما کماری تیسرے وشو ودیالے کنگ اینڈ کوئن میکنگ مشینری ہے. ہم نے کہا میں بھی ایک پرزا بننا چاہتا ہوں. یہ لیٹر گیا, بڑا سندر لیٹر لکھا, چاروں طرف بارڈر لگا, اس وقت کمپیوٹر تو تھے نہیں, ہاتھ سے لکھا. بابا کا 2 دن میں جواب آیا. بابا نے 2 ڈائریکشن دیے, 2 چیزیں مجھے بتائی. بابا نے کہا چائلڈ بی پیشنٹ, انگلش میں جواب آیا. گیو دس نالج ٹو کو انجینئرز جو اپنے اسٹوڈینٹس ہیں اینڈ ٹو یور پیرنٹس. یہ بابا کا ڈائریکشن تھا, پتر تھا جو ہمیں ملا لال اکشروں میں. اور نیچے ہمارے دادا بچو رتن تھے نا, ہاں انگلش ہندی بتایا. میں نے یہ کہا بابا میں کوئی وہ نہیں چاہتا بلڈنگ ڈیزائن کرنا یعنی اور بنانا, پرنتو جو آپ ایک بہت بڑا ستیوگی محل یا ستیوگی جو بنا رہے ہیں بہت بڑی بلڈنگ, اس میں میں بھی ایک پتھر بننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو وانٹ بیکم. پھر کہا کہ جو آپ میں سول انجینئرنگ میں ڈیزائن کرتے ہیں وہ روڈس اینڈ ہائی ویز, وہ میں نہیں چاہتا, پرنتو میں چاہتا ہوں میں بھی اس ہائی وے پر رن کروں جو کہ پہلے پرم دھام جاتا ہے پھر گولڈن ایج میں جاتا ہے. پھر میں نے کہا جو بابا جو آپ کنگ اینڈ کوئن میکنگ مشینری برہما کماری سے ہے, اس میں میں بھی ایک پرزا بننا چاہتا ہوں. تو بابا کو بہت اچھا پتر لگا. ایک باری اب بہن کا نام بھول گیا تو وہ تو بہت ہی ابھی نہیں ہے, تو اس نے کہا یہ اس پتر کا جواب آپ کو جلدی آئے گا, بہت اچھا پتر لکھا ہے. تو 2 دن کے اندر ہی بابا نے جواب دے دیا. تو بابا نے یہی انسٹرکشن کی دی, بچے تم ابھی صبر کرو اور یہ گیان جو ہے اپنے انجینئر ساتھیوں کو دو اور اپنے پیرنٹس کو دو. یہ بابا نے انسٹرکشن ہم کو دی. ہم بتایا 62 سال ہو گئے جب سے ہم اس گیان میں ہے, بھلے ہم نے جو بابا کہتا 8 گھنٹے یوگ ہونا چاہیے اور باتیں ہونی چاہیے, پرنتو بابا نے جو ہمیں انسٹرکشن دی نا اس کو پورا کرنے کی ہم نے کوشش کی, اس میں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا. तो हमने एक पर शुरू हो गया, हम तो फिर ब्राह्मणों का काम या ज्ञान देना और ज्ञान लोगों को देना। अपना हम स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते थे, अपना हमारा कमरा था, हर एक को क्यूबिकल कमरा मिलता था, एक एक कमरा हर एक के लिए, और उनका भी था, हमारे ओम प्रकाश भाई जी थे। हम दो तीन चार आदमी का एक सर्वेंट होता था जो हमारे कपड़े लाते, बड़ी लाइफ बड़ी वो स्टाइल था वो। तो हमने अपना दरी बिछा दी, उस वक्त शिव बाबा का चित्र होता नहीं था, ये एक लाल बल्ब लगा दिया, ग्रामोफोन लाया वो चाबी वाला, वो सुई लगाते थे, रिकॉर्ड बजाने शुरू कर दिए, वो ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें ऐसे रिकॉर्ड होते थे, या तू प्यार का सागर है, ऐसे ऐसे गीत लगाने शुरू किए, अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देना शुरू किया। उन दिनों में त्रिमूर्ति निकलता था मैगजीन, त्रिमूर्ति हम बस में बैठते थे, सारा त्रिमूर्ति सबको बांट देते थे, उसे हमारे स्टूडेंट भी होते थे, तो उनको फिर हमने उतरते थे सब वापस ले लेते थे, पूछते थे आपने क्या पढ़ा क्या किया। ऐसा जोश था, ऐसी एंथुसियाज्म था, ऐसा हमारी वो थी रुहाब था, जिसको समझाया वो समझा हम बात तो ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है अब बताइए। उस मैगजीन में यही होता था, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, पतित पावनी गंगा नहीं, और कोई बातें आजकल के ज्ञान अमृत की तरह नहीं होती थी, ज्ञान के जो बाबा बोलते थे उस मैगजीन में होता था। फिर जब उतरते थे, मैं पांच दस मिनट उतरे बातचीत की तो हमारे स्टूडेंट बन जाते थे, हमारे उस हॉस्टल के ही कई स्टूडेंट हमारे वो क्लास लगी हमारे यहाँ पर। तो हमारे वार्डन साहब कहते ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हमने कहा आश्रम खोल गया ऐसे, तो हमने कहा हम छोड़ते हैं, हम खत्म जाते हैं यहाँ से, अपना जाके बैर सेवा करेंगे, मकान लिया फिर, और वो वहां पर वो सारा जो सेंटर का अरेंजमेंट होता है वो किया, संदल ली, दरी ली, ये लिया, सब कुछ लिया। तो तभी दादी जानकी कई दफा कहती है ना, मैंने आत्म प्रकाश ओम प्रकाश का भोजन बना के खिलाया है। फिर दादी जानकी जी आए थे तो मैं दो तीन दिन भोजन बनाया, हमें रोज कहते हैं मैं दादी अभी को तो हम अभी आपको बना के खिला दे। तो इस प्रकार से वो शुरू होगी सेवा, माता हमको मिलगी, इस प्रकार से वहां पर सेवाएं शुरू हुई। और बार बार बाबा मम्मा से मिलने आना जाना आते रहे, और बाबा मम्मा इंस्ट्रक्शन देते रहे। और एक बार हम मधुबन में आए, पहले पहले जब मधुबन में आए उस वक्त मधुबन की क्या वो थी बताते हैं आप, कुछ यहाँ बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, ये है ना बीच का ये टीन वाला जो है यही था, और उसमें यीशु दादी का ऑफिस, बाबा मूढ़े पर बैठ करके लिखते थे, और उसी जो वो बरांडा सा है उसी में जो है वो ऐसा लंबा सा है, उसमें बाबा मम्मा संदल बना आकर बैठ करके मुरली चलाते थे, टाट था या दरिया थी उस पर हम बैठ करके, कितने 20-30 मुश्किल से 20 मुश्किल से होते होंगे क्लास के स्टूडेंट जो बाहर से आए होते थे, बहुत अगर ज्यादा 40 हो जाए कदम बहुत भीड़ हो गया है, ऐसा बाबा कहते थे, और बिल्डिंग बाहर लेनी पड़ती थी आस पास के। तो इस प्रकार से चला, तो बाबा क्या बोलते थे आप आश्चर्य कहेंगे, बाबा कहते बच्चे बहुत सर्विस होगी, आप उसे यहां तक लाइन लगेगी, और सब लोग आएंगे, वो शंकराचार्य भी आएंगे, फिल्म स्टार भी आएंगे, सब बाबा ऐसे ऐसे बातें करते थे। हम कहते अभी तो बहुत थोड़े कोई कम है, कब आएंगे, हम सोचते थे भगवानों वाच है तो ठीक ही है, अब आप देखो जो बाबा ने कहा सब कुछ, कोई बात भी जो बाबा ने कही वो ना हुई हो, सब बातें वो ठीक ठीक उसी प्रकार से हो रही है। तो हम आए बाबा को, फर्स्ट टाइम जब बाबा के पास आए, हमारे पास कैमरा था, ब्लेजर पहना हुआ था कॉलेज का, तो बाबा क्या थे ये जो है ना ये इधर वहां पर वो खेल रहे थे, अब ये शांति स्तंभ है, ये टेनिस कोर्ट था, ये बाबा खेल रहे थे, क्या खेल रहे होंगे आप बताओ, बैडमिंटन नहीं क्रिकेट खेल रहे थे, बताइए एट द एज ऑफ 80 होगा 81 होगा शायद, बाबा क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा वो सीन, मैंने कैमरे में फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने कहा खेल बंद किया, तो बाबा ने कहा बच्चे फोटो मत लो, मैं कहा अच्छा भगवान बाबा कह रहा है तो ठीक है, मैंने कहा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा खेल रहा है तो मैं फोटो तो ले लू ये बात, तो बाबा मैंने कहा बाबा अच्छा ठीक है आप कहते तो नहीं लेता। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, देखो कितने जबरदस्त, बाबा कहता बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं, क्या मतलब इसका, ना शिव बाबा का आएगा ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा का आएगा, मेरा फोटो तो आएगा नहीं, और बाबा अपने को छुपाते कैसे थे, बच्चे ये शरीर तो छी छी है, یعنی وہ ہمیشہ دے کے باتوں میں تو کسی کو لاتے نہیں تھے. دیہی ابھیمانی بنو, آتما کو دیکھو, شیو بابا کو دیکھو, ہمیشہ بابا ہر بات میں ہر ایکشن میں یہ شو کرنے کی کوشش کرتے. یہ ہم نے سین دیکھا تھا, ہم نے اس کے بعد کبھی فوٹو کھینچی نہیں. میرا کوئی اتنے سال بابا کے ساتھ, ہم 12 سال تو آتے جاتے رہے, ایک بھی فوٹو بابا کے ساتھ نہیں ہے, کیوں بابا نے منع کیا تھا تو ہم نے نہیں کھینچا فوٹو. تو اس پرکار سے پہلی بار آنے کا موقع ملا, تو پھر ہم نے وہاں بہت اپنے اسٹوڈینٹس کو گیان دینے کی کوشش کی, تو وہاں سیوا کیندر کھل گیا, اور بھی جگہ سیوا کیندر کھلے. تو بابا مرلیوں میں نام لیتا تھا, پٹیالہ کے گوپ جو ہیں بڑے مہاویر ہیں, مہاویر ہے کیونکہ سیوا, بس ایک سینٹر کھولنا بھی بڑی بات تھی. ہم بتائیں ہماری سگائی ہو چکی تھی, سنو. تو وہ لوگ کہیں سگائی کرنے والے کہتے یہ آدمی تو سادھو سنیاسی بن گیا ہے, انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہمیں کوئی درکار نہیں آپ کی. تو بابا نے مرلی میں کہہ دیا آتم پرکاش بہت مہاویر ہے, دیکھو یہ توڑ تاڑ دیا اس نے, اپنے آپ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو اس پرکار سے چلتے رہے, اور پھر بابا نے دوسرا بات کہی تھی اپنے لوکک پریوار والوں کو گیان دو. تو سمر ویکیشن میں ہم گئے اپنے لوکک پریوار میں, سبھی ماتا جی پتا جی, لوکک ماتا جی پتا جی, بھائی بہن سبھی تھے, اور گاؤں تھا ہمارا بڑا سارا. تو ہم نے ان کو گیان دینا شروع کیا, انہوں نے بھکتی تو بہت کی ہوئی تھی ہمارے لوکک پتا جی نے, کہ گیان تو بڑا سندر ہے, ان کو بہت اچھا لگا گیان. پرنتو انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دی میرے پر. کنڈیشن کیا لگائی کہ اگر آپ کا بابا, یعنی ابھی تک انہوں نے اپنا بابا نہیں مانا تھا, اگر آپ کا بابا مجھے کچھ دکھا دے تب میں مانوں گا کہ یہ پرماتما ہے. میں نے کہا مجھے تو ابھی تک دکھا کچھ نہیں, اتنے میں چل رہا ہوں, میں بابا سے مل کے بھی آئی ہوں, مما سے مل کے بھی آئے ہوں. ایک دھیانی دادی ہوتی تھی, جاتی تھی دھیان میں, پیسے لے کے وہ کبھی پھل دیتی تھی, کبھی کچھ دیتی تھی نئے نئے کو سب. تو میں نے کہا میں تو دھیان میں نہیں گیا, تم ابھی آپ تو کبھی مدھوبن بھی نہیں گئے, آپ کو دھیان کیسے بابا دکھائے گا. انہوں نے کہا میری کنڈیشن یہ ہے. ان کو میں نے لکھ دی ہے کمنٹری, میں آتما ہوں شدھ آتما سارا جو ہے نا کمنٹری بینجی سناتے ہیں, پوری کمنٹری اردو میں لکھ دی. وہ کھیت میں جائیں تو اندر بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں. تو کیا ہوا, ہم سب ایک دفعہ گروار تھا, بھوگ لگا رہے تھے, بیٹھے تھے, ہماری ماتا جی بھی سب وہ تھے, تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ریئلٹی ہے یہ, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ. اور پھر وہ جیسے نیچے اترتے ہیں دھیان والے, اترے بڑے اداس. میں بڑا خوش ہو رہا ہوں, سم تھنگ از ہیپننگ, کچھ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ان کو دھیان میں دکھ رہا ہے. تو میں بڑا خوش تھا, چلو کسی کو تو ہو. تو میں نے کہا کہاں گئے تھے لالا, ہم لالا جی کہتے کہاں گئے تھے, کہتا میں کہیں اوپر گیا تو بہت سندر شری کرشن چھوٹا سا بچہ میرے سامنے آیا. وہ شری کرشن کو بہت یاد کرتے تھے, ساری رات وہ حکیم تھے اور بھگت بھی تھے, وہ اوروں کے گھروں میں جا کر بھاگوت پران سناتے تھے, گرمکھی کی بات تھی وہ, اور وہ کتھا بھی کرتے تھے وہ. اور شری کرشن تو رات بھر بھر وہ اپنی بھاگوت پران کو رکھ کر کے سو جاتے تھے, اتنے شری کرشن کی باتیں سناتے تھے وہ. تو وہ کہتا مجھے شری کرشن سامنے آیا, میں پکڑتا ہوں وہ, ادھر پکڑوں تو ادھر بھاگ جائے, ادھر پکڑوں تو ادھر بھاگ جائے, میرے ہاتھ میں نہیں آیا وہ چھوٹا بچہ, میں چاہتا تھا پکڑ لوں اس کو. تو پھر آپ کے بابا سامنے آیا ہے, ابھی تک وہ بابا سے ملے نہیں تھے, میں بابا کا فوٹو بھی نہیں دیکھا تھا, ان دنوں میں جھاڑ تھی مورتی بھی نہیں بنا تھا میں سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا بچے اگر تم دھارنا کرو گے, نشچے بدھی بنو گے, اور تب تمہیں شری کرشن تمہاری گود میں آئے گا. بابا نے کنڈیشن لگا دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اتنی ایج تو تھی 50 سو کی شاید کتنی تھی, انہوں نے دھارنا شدھ کھان پان ٹھیک کر دیا, وہ ٹھیک کر, جو تھوڑی بڑی باتیں ٹھیک کر دی. بس پھر اگلے گروار پھر بھوگ میں لگایا ہم نے, پھر وہ اوپر دھیان میں گئے, دھیان میں گئے اور پھر شری کرشن ان کی گود میں آیا, اتنے اس کے آنسو آئے, اس کی منوکامنا بابا نے پورن کر دی. اس کے بعد جو تھے سارے وہ گاؤں والے بھی گئے, بھگت جی کو کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کس کو مل رہا ہے, کیوں خوش ہو رہے ہیں, کیوں اس کے آنسو آ رہے ہیں, کیا بات ہے. سارے گاؤں والے بھی پریوار والے بھی بڑے خوش ہوئے, بھائی کچھ تو ہے یہ چیز. تو ہمارے سب گیان میں بھی آگے بڑے بھائی تو بانی تھے, دوسرے بھائی وغیرہ سب گیان میں آگے, ہمیں بھی بڑی خوشی, چلو ایک تو ہمارا لوکک پریوار میں سے دھیان میں گیا. تو तो इतने ध्यान में जाते थे हम, बताया आपको, हम कहे हमने लैंड बेचनी थी, मैं बाबा से पूछ के आओ लैंड बेचे क्या ना बेचे। एक बार ये कहता बाबा, कहता नहीं अभी नहीं बेचो। फिर दोबारा कई दिन कई समय के बाद फिर पूछा, बाबा ने कहा आप बेच दो। ये इतना एक्यूरेट संदेश लाते थे, बात मत पूछिए। बाबा उनको बहुत प्यार कर, जब मधुबन में आते थे या बाबा होते थे बॉम्बे और मम्मा यहां होती थी, उनको हिस्ट्री वाली बन गया था, तब मम्मा उनको गद्दी पर बिठाती थी, प्यारे लाल भोग लगाओ, आज तुम भोग लगाओ। इतना बाबा मम्मा से प्यार हो गया था उनका बहुत। इस प्रकार से पूरा परिवार जो था, माताजी, लौकिक माताजी, पिताजी, भाई बहन, सभी ज्ञान में चलने लग पड़े। तो ये बाबा का दूसरा जो कार्य था कि तुम इन सबको ज्ञान दो, तो वो भी पूर्ण हो गया। सच कहते अब ये हमारे लोग कितने वो थे, लौकिक हमारे माता पिता चले गए, शरीर छोड़ दिया, बड़ा भाई दो भाई भी वो भी शरीर छोड़ के, भाभी भी शरीर छोड़ गई। अब एक हम लौकिक बहन है, एक भाई है, एक भाई, अभी तीन चार बच्चे, बाकी सब तो बाबा वो अपने नया जन्म ले लिया उन लोगों ने। तो कहने का मतलब बाबा का दूसरा जो फरमान था कि तुम ये ज्ञान दो, वो भी बाबा की जो डायरेक्शन थी हमने पूरी की। इस प्रकार से चलते रहे। और वो उन दिनों में क्या था, सेवा केंद्र खोलने का बड़ा, क्योंकि सेवा केंद्र बहुत कम थे, बहनें बहुत थी और सेवा केंद्र कम थे, तो सेवा केंद्र खोलने का शौक हुआ। चंडीगढ़, इधर उधर, नाभा और कुरुक्षेत्र, ये सब सेवा केंद्र खोलने का बाबा ने मौका दिया। ये करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ, हम पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल था ही नहीं, खत्म हो गया। क्योंकि कभी बाबा आ रहे हैं वो पंजाब में, कभी मम्मा आ रही है, कभी हापुड़ का झगड़ा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी भोग है। उन दिनों में दो दफा भोग लगते थे, एक गुरुवार को एक इतवार को, तो वो भोग हम सब अटेंड करते थे, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। आई वॉज डिस इंटरेस्टेड इन स्टडी। जाएंगे हफ्ते के बाद क्लास करेंगे, जाएंगे अब स्टूडेंट वो कर एपी मेहता, मैं यस सर, तो स्टूडेंट भी हंसते थे, देखे आ गए प्रिंस ये ना। कभी कभी आते हैं पर जैसे कि ये कोई प्रिंस कॉलेज हो जाएगा, जब मर्जी आ जाओ, तो वो हंसते थे, हम भी, हमें तो बड़ी बात नहीं थी। और दे हम बताए सर्विस में देहमान तो आया नहीं, हम त्रिमूर्ति जाल छपे। अभी हमारी दादी और रुक्मिणी दादी, ये भी हमारे वहां पर है, इनको ले जाते थे वो कॉलेज में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह ये भाषण करते थे, आई इज यूनिवर्सल, माई इज नॉट यूनिवर्सल, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। इस प्रकार से चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बाबा ने तो हमको डायरेक्शन देते रहे, तो किसी न किसी प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज पास भी कर लिया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, विदाउट एनी स्टडीज, आई टेल यू, पढ़ाई भी नहीं की। बाबा ने पता नहीं पास क्यों कराया, ये भी इसमें रहस्य है भाई। बच्चा अगर कहेंगे भाई क्या है इसकी डिग्री है, अगर कोई काम दूंगा डिग्री क्या है, तो कुछ तो इसको डिग्री दिला दो, ताकि किससे बात करने के सामने बात करेगा तो कुछ तो सेवा होगी ना उससे, ये सेवा के लिए देखा जाए। तो अभी आते हैं हमारे पास कोई पीएचडी है, कोई कुछ है, आते नीचे मिलते हैं, हम भी कहते हैं हमने भी भाई साहब इंजीनियरिंग पास की हुई है, हमें पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं। तो इस प्रकार से बाबा की, जैसे बाबा ने देखो हमारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्या बनाया, क्या कहते थे, मैं गांव का छोरा था, बाबा बोलते ना मुरली में, वो क्या बना दिया, डायमंड मर्चेंट, हाईएस्ट टॉप पे ले गए। हम भी कहते हम गांव के छोरे थे, देखा जाए कुछ नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने हमको इंजीनियर बना दिया, हम इंजीनियर बन गए। देखो तो ये ड्रामा अनुसार शिव बाबा ही सारा कार्य कराते हैं, पास हो गए। अभी अभी वो शुरू होती है भैया, उसके बाद क्या हुआ, हम बाबा के पास आए, बाबा मम्मा माता पिता को लेके एक दफा हम आए बाबा के पास, इंजीनियरिंग पास कर ली, छोटी होगी उसकी, उससे आए बाबा मम्मा के, बाबा ने तो कहा था बच्चे मैंने आपको क्या कहा था, तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, सीधा मुझको भेज दिया जगदीश भाई जी के पास दिल्ली में। और हमारे लोग एक फादर तो आप जानते, कहते भाई पढ़ाई किया है, तो वो बाबा को कहने, मम्मा को कहने लगे कि अगर जॉब भी करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, जग में करेगा। मम्मा ने कहा नहीं, जो बाबा कहता है वैसे चलना है। तो हम वहां जॉब नहीं किया, सीधा वहां पर गए जगदीश भाई के पास, तीन चार चार साल ट्रेनिंग ली, सारे प्रिंटिंग की और चीजों की। तो क्या हुआ फिर, एक भी एक दफा मैं आया यहां मधुबन बाबा से मिलने के लिए, अभी हाल बन चुका था, हिस्ट्री हाल, मैं बैठा हूं उसी वक्त क्लास में, पता नहीं ऐसी कोई ट्रेन थी, हाँ उसके बाद आया, आया हम उसके बाद बाबा के सामने बैठे थे, क्लास के बाद बाबा बुलाते बच्चे तुम बॉम्बे जाओ, आया हूं अभी उसी, किसी सुबह गाड़ी आती हो कोई याद नहीं है, और बाबा ने कहा बॉम्बे जाओ, बॉम्बे भेज दिया, वहां एग्जीबिशन नहीं बनी थी शायद कुछ, वो हमें वो दिखाया, और हम कॉपी करने में होशियार हैं हम बताए आपको, तो हमने वो देखा बड़ा अच्छा है इसको, तो हम वहां से स्लाइड लाए उनकी, तो हमें वो लौकिक फादर से कोई बरसा भी मिल गया था, तो हमने क्या कि आकर के दिल्ली में चित्रशाला खोल दी, एक आर्टिस्ट को एम्प्लॉय कर दिया तीन चार को, और चित्र बनवाने का काम शुरू कर दिया, पहला पहला पिक्चर हम बताएं आपको सीडी बनाई हमने वहां उनसे आर्टिस्टों से, और उन दोनों में हम एक और खुशी अपनी सौभाग्य समझता हूं, सभी दादियों से सभी दादाओं से बड़े बड़े जो हमारे हैं पूर्वज सबसे मिलके सबसे मिलने का सब हाँ मैं देखा सबसे मिलने का सबके साथ कार्य करने का हमें मौका मिला सभी से, चाहे दादा ब्रज किशोर हो बहुत प्यार करते थे हमको बताया, एक दफा दिल्ली में आए हमारे बाबा ने हमें एक स्कूटरी भेजी थी इटली की नारायण दादा ने भेजी थी हमें दे दी वो, हम सारा दिन स्कूटरी कभी कहीं कार्य में लगे रहते थे, तो दादा हमारे वो उन दोनों में 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, तो दादा आया हमें 100 रुपया दे के कि तुम्हें बहुत घूमना पड़ता है तुम ये पैसे रखो, मैं मेरे पास बहुत है आप मत दो, फिर भी दे के गए दादा ब्रज किशोर बहुत प्यार करते थे, दादा बिचुरतन दादा दीदियां दादियां सबसे हमने कुछ ना कुछ, बड़ी दादी और वो ये दूसरी दादी वो सभी दादियों से बहुत हमारा, हाँ दीदी मनमोहिनी हाँ वो तो हमें चित्रशाला खोलने के हमारे वो निमित्त बनी, वो जब देखा आर्टिस्ट एम्प्लॉय करते उन्होंने एक मकान कोई था किसी का उसको दे दिया, चित्र बनाने शुरू कर दिए, पहले सीढ़ी भेजी बाबा को बहुत अच्छी लगी, तब से बाबा के पत्र हमारे पास आने शुरू हो गए, यहां इसको कार्य मिल गया, हम फिर 20 चित्रों का सेट बनवा करके बाबा के पास ले आए, फर्स्ट एक कार्य किया 20 चित्रों का सेट लेके आए, और हिस्ट्री हॉल बन चुका था वहां पर, हमने सारे सजा के रख दिए, फिर आए बाबा मम्मा या पेंटिंग हाथ से आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, वो पेंटिंग करते थे वो, और वो आत्मा परमात्मा नए नए चित्र सारी चीजें बना के लाए, तो बाबा को सामने रख दिया, बाबा मम्मा या बाबा दीदी वो आए, सारा उन्होंने देखा हिस्ट्री हॉल में, देख के बाबा उसे समझा भी बड़ी अच्छी अटेम्प्ट है, अच्छी बात है, इसकी चाहिए उस वक्त जरूरत थी इस बात की, तो बाबा ने फिर हमको देखो वरदान दूसरा कैसे दिया, फिर बाबा ने अपने कमरे में बुलाया, फर्स्ट टाइम खुद बुलाया, बच्चे आओ मेरे पास, मैं नीचे बैठने लगा, जो गद्दी देखी ना आपने बाबा की, मैं नीचे बैठने लगा, बाबा नहीं नहीं मेरे साथ गद्दी पर बैठो, बाबा ने अपने साथ गद्दी पर बिठाया, और बाबा ने फिर महावाक्य उच्चारण किए, बहुत बड़ा वरदान जबरदस्त वरदान था, कि बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, समझे, बाप की गद्दी सो बच्चों की, इतना नहीं फिर आगे और यहां भी और वहां भी, वहां कहां, हाँ सत्य, देखो वरदान मिला हुआ है, हम निश्चिंत है कि हमें गद्दी मिलनी है पक्का, समझे, क्योंकि जब से आए तब बाबा की सेवा, अभी आप सभी अगर आप समझते हैं ये हमारा घर हमारे सेवा सेंटर जो भी है बाबा के है ना, किसके हैं बाबा के नहीं है, बाबा के है, अगर हम समझते हैं कि बाबा के हैं तो बाबा की गद्दी है, तो जरूर आप हम वो गद्दी सत्य में भी गद्दी मिलेगी, अगर हम समझते हैं अपने भी बाबा की है, ये वरदान मिलने से बहुत नशा भी चढ़ा, बहुत खुशी भी हुई, बहुत आनंद भी आया, तो हमने फिर इससे बहुत सेवा हुई, आप बताइए उन दिनों में और कोई साधन नहीं था, यही एग्जीबिशन बनी, सैकड़ों एग्जीबिशन बनाई होंगे हमने वहां, सैकड़ों म्यूजियम बने जगह जगह, बाबा ने कहा वहां जाओ यहां जाओ वहां बनाओ यहां बनाओ, सारा इंडिया बाबा ने घुमाया हमको, इसी कारण से एग्जीबिशन बनी, म्यूजियम बने, बड़े बड़े मेले बने, फेयर स्पिरिचुअल फेयर बनते थे, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल फेयर, जगह जगह वो सारी छोटी सी चित्रशाला में ही बने, उन दिनों में कंप्यूटर नहीं थे, कुछ भी कोई था नहीं, सब एक एक सिर नाक मुंह कान बाल हाथ से ब्रश से बनाने पड़ते थे। तो ये इतनी चीजें बनी और जगह जगह बाबा कहते वहां भेज दो, कानपुर भेज दो, वहां भेज दो, ऐसे भेज दो, बनते रहे और भेजते रहे, बहुत प्रदर्शनियां लगती रही और वो बहुत अच्छा रहा। ये एक ये सेवा का चांस बाबा ने हमको दिया और हम उसमें बिजी हो गए बहुत, बाबा को भी अच्छा लगा और इस प्रकार से चलते रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये चित्रशाला ने सेवा की वहां पर कृष्णनगर, हमारी कमलमणि दादी थी उनके साथ मिल करके एक मकान किसी ने दिया था, उसमें आर्टिस्ट एम्प्लॉय करके ये चित्रशाला जो थी पहली पहली हमने बाबा ने वहां खुलवाई और ये बनाई और इससे सेवा हुई। उसके बाद तो फिर वही चित्र बनते थे उन दिनों में तो, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले बढ़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जब जगदीश भाई फॉरन में बिजी हो गए, फॉरन की सेवाएं शुरू हुई, तो हमें मीटिंग में कहा गया ओम शांति भवन में
एक बाबा के अव्यक्त होने के बाद,
हाँ अव्यक्त होने के बाद बाबा अव्यक्त हुए, हम आए थे उस वक्त तो हमें कोई वो नहीं लगा भाई बाबा को जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग है कि बाबा हमारे साथ हैं, अभी भी ऐसा लगता है बाबा हमारे साथ है, कोई ऐसा नहीं लगता, फीलिंग आती है कि वो एब्सेंट है, नो आई टेल यू। जैसे हम जब बाबा कहते हैं पहले क्या आता है, बाबा कहने पर आपके सामने क्या आता है, शिव बाबा आता है, ब्रह्मा बाबा आता है, है? मेरे सामने ब्रह्मा बाबा आता है, फिर बाद में शिव बाबा आता है, आई टेल यू क्लियरली, बाबा आएगा कहते फिर ब्रह्मा आएगा, शिव बाबा भी साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बोल नहीं, बाबा अव्यक्त तो हुए ठीक है, हमें वो तो हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई कुछ वो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अव्यक्त पालना शुरू हुई, मालूम पड़ा तो और ही सेवाएं बढ़ती चली गई। देखो अव्यक्त बाप दादा ने एक दफा प्रश्न पूछा, म्यूजियम बना है यहाँ पर, ये सारा म्यूजियम वहीं से बन के आया था दिल्ली से, तो बाबा उद्घाटन कर रहे थे अव्यक्त बाप दादा, तो बाबा कहते हैं ये चित्र जो बनाया तुमने शिव किरणों वाला, हम 32 गोल डालते थे, इतना क्यों, थोड़े हो तो क्या हो जाए। मैंने बाबा बात पहले तो आप बिंदु है, अगर हम उसको मैग्नीफाई नहीं करेंगे, उसकी महिमा ज्यादा नहीं लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इसलिए मैग्नीफाई करते, इसलिए बाबा की महिमा ज्यादा लिखते हैं। बिंदु है वो ज्ञान का सिंधु भी तो साथ है, महिमा वो गुणों का सिंधु भी है, इसलिए फिर बाबा चुप, बाबा ने कहा ठीक है। इस प्रकार से कई इसी प्रकार से बाबा भी कई दफा साकार बाबा भी कई पूछते थे बात ये ऐसे कैसे है, तो हम बाबा से मिलते थे जुलते थे। लेकिन इस प्रकार से बाबा ने हमें, हम बताए बड़े लकी है कि साकार बाबा के साथ भी, सभी दादियों के साथ भी, हर एक दादी के पास म्यूजियम बना, हम आ गए कलकत्ता भी गए तो बॉम्बे भी गए, हैदराबाद भी गए, जहां जहां अभी हैदराबाद वहां भी गए, तो हमें ऐसा बाबा ने एक सेवा दे दी जिसमें सभी दादियों से हमारा कनेक्शन रहा। फिर क्या हुआ, जगदीश भाई सेवा में बिजी हो गए तो हमको कहा कि आप लिटरेचर भी संभालो, मैगजीन भी संभालो, हमने कहा ठीक है, यंग है तब थी, अभी भी अब 82 के हो गए, तब तो हम छोटे थे, तो हमने कहा वो भी संभालेंगे, वो भी बाबा ने संभलवाया। तो धीरे धीरे करते मैगजीन भी बढ़नी शुरू होगी और अपनी छोटी सी प्रेस भी लगा ली वहां पर, और फिर आगे बढ़ते चले। और फिर 92 में जब बहुत सेवाएं बढ़ने लगी, हमारी मैगजीन भी पहले तो थी 10-15 हजार, फिर 35 हजार, बढ़ती गई, उनको छापे कहाँ, कभी वो कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, छोटी सी प्रेस लगाने के बाद भी। तो फिर हम आए यहाँ पर मधुबन में, तो दादी ने कहा तुम यहाँ शांतिवन में आ जाओ, सभी ने मीटिंग में पास कर प्रेस को शांतिवन में लाओ, बहुत बड़ा एक ये डिसीजन था आई टेल यू। अभी उस वक्त ये तो बन चुका था, कॉन्फ्रेंस वगैरह थोड़ी होती थी, उसके बाद कॉन्फ्रेंस होनी शुरू हुई, तो पहले क्या प्रिंटिंग चाहिए, जो भी आप कार्य करते हैं पहले प्रिंटिंग चाहिए, कार्ड चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, वो चाहिए, पहले पहला काम हमारी बाबा की ओम शांति प्रिंटिंग प्रेस करती है। तो इस उसके यहां होने से, नहीं तो पहले क्या होता था, मृत्युंजय यहां से फोन करता था, भाई ये चीज वो छपनी है, क्या नाम प्रोग्राम बुक, ये निकाल दो, ये डाल दो, ऐसे करो ऐसे करो, गलतियां हो जाती थी, फिर हम बाहर से लेके आते थे, तो यहां प्रिंटिंग प्रेस आने थे, हम बहुत लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ और बहुत सेवाएं हुई, कितनी चीजें बड़ी। अभी इस वक्त हमारी जो ज्ञान अमृत है 3,45,000 छपती है। जब हम पहले आए थे केवल 35,000 से भी कम थी, लेकिन यहाँ आने पर 3,45,000 छपती है। 7 दिन उसकी पोस्टिंग होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। और कितनी किताबें छपती है, क्या कुछ छपता है, बहुत कुछ छपता है। कभी बहन जी कहते हैं हैंडबल छापो, लो जी छपा पर है, छप गया ना बहन जी आपका, छप के आया था, टाइम लगता नहीं, अपने घर के प्रेस है। इस प्रकार से चलते रहे, आगे बढ़ रहे हैं, काफी रास्ता पार कर लिया, अब थोड़ा सा रास्ता बाकी बचा। हमें ऐसा फीलिंग आती है तो पुरुषार्थ भी हम देखो हम बताए करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें बाबा को बाप समान बनना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। अभी इस बात पर आते हैं कि हमें बाबा मम्मा समान बनना है, बाबा समान बनना है, कैसे बनेंगे, क्या पुरुषार्थ है उसका। बड़ा सिंपल, बाबा देखिए पहला तो बाबा कर्मातीत फरिश्ता बन गए। 32 साल लगे ना बाबा को, 32 साल कर्मातीत फरिश्ता बन गए। बाबा ने एक दफा कहा था मुरली में, बड़ा अच्छा कहा, बच्चे मैंने अपना तन मन धन जन सब स्वाहा कर दिया। क्यों, क्यों किया? बाबा ने पूछा, जवाब भी उसी मुरली में दिया, क्यों किया आप बताओ आप। बाबा ने कहा इसलिए किया ताकि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए। यह है पुरुषार्थ। अगर आपने अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत में कुछ याद आ गया तो क्या फायदा हुआ। तो बाबा ने जब अव्यक्त हुए तो अंत में कौन थे, कोई लौकिक नहीं था, एक दादी का हाथ था, अलौकिक ना, और दादी को शक्तियां दी, उड़ गया, अव्यक्त हो गए। इसी प्रकार से हमारा कर्मातीत फरिश्ता बन गए, फरिश्ता बन गए हमारी इंतजार कर रहे, आओ बच्चे मैं ले चलता हूँ, इंतजार कर रहे हैं। हम भी क्या बनेंगे, कर्मातीत फरिश्ता हमको बनना है, ये है पुरुषार्थ। हम बताए उस दिन बाबा ने एक बात कही बड़ी अच्छी, मुझे बार बार याद आती है वो, बच्चे सबसे पुण्य काम कौन सा है, सबसे बड़ा पुण्य का काम कौन सा है बताओ, है बाबा के। ये तो बड़ा इजी है, मुश्किल है तो इसी बार। मैंने कहा चलो कुछ नहीं कर रहे आप, भाषण नहीं कर सकते हमारी ये शीलू बहन की तरह, चलो हम कम से कम ये काम तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, याद करो याद करो, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट माइट हूं, घर को याद करो, वर्षे को याद करो, परम तो उसको चक्कर को याद, कुछ भी याद करो। अगर हम ये शुद्ध संकल्प करते रहते हैं तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। मैं तो ये करता हूं कि एक तो मुझे उस पता नहीं ये कैसी वो हुई लगा, अरे भाई तुम और कुछ नहीं कर, तुम ये काम तो कर सकते हो, बैठे बैठे चलते फिरते भी कर सकते हो। तो हमको तो बनना कर्मातीत फरिश्ता बाप समान बनना है जरूर। और एक दफा दादी जानकी जी बैठे थे हमारे साथ, मैं भी बैठा था, दादी जानकी मेरी एक इच्छा है, तेरी क्या बताओ इच्छा, क्लास में ही बात चिटचिट हुई। मैं कहता हूं कि मैं जब शरीर छोड़ू मुझे तकलीफ ना हो, खुशी खुशी जाऊंगा, अच्छी बात है। मैं कहा दादी आप बताओ, कहता तथास्तु, दादी ने कह दिया तथास्तु। मैंने कहा ठीक है, देखो इन्होंने ये वरदान दिया और बाबा ने वरदान दिया कि बाप की गद्दी तो बच्चों की गद्दी, तो हमें वो वरदान मिल गया और क्या चाहिए भाई। दादी ने कहा कि तथास्तु और क्या चाहिए बताओ। तो हम ये चाहते हैं कि हम बाप समान फरिश्ता बने, उसका सिंपल पुरुषार्थ है। पहले तो अब हम ब्राह्मणों के विक्रमाजीत बन जाए, अब कोई विक्रम नहीं होना चाहिए किसी ब्राह्मण से, नो विक्रम। विक्रम में कोई ऐसा उल्टा सुलटा काम नहीं होना चाहिए, विक्रमाजीत, ये फर्स्ट स्टेज है कर्मातीत बनने की। मैं समझता हूं विक्रम तो होता नहीं होगा ब्राह्मणों से, अब तो कोई विक्रम नहीं होता, बहुत समय हो गया। विक्रम तो पहले ज्ञान में आने के बाद भी कोई नहीं हुआ, लेकिन अभी तो बिल्कुल उसका सूक्ष्म भी विक्रम भी होना चाहिए। दूसरी स्टेज है विकल्प जीत, विकल्प नहीं आना चाहिए अभी, नो विकल्प, गलत वो डल्टी चीज है, नो विकल्प, दृष्टि वृत्ति बिल्कुल शुद्ध हो, विकल्प नो विकल्प नहीं आता होगा हमारे ब्राह्मणों को, तो क्यों आता होगा, कोई विकल्प नहीं। ये सेकंड स्टेज है, अगर आता है तो पता ही उससे क्या है, इससे जो है जो आपने योग की कमाई की हुई है बैटरी डिस्चार्ज होती है, जो चार्ज किया आपने योग में लगा करके करके वो बैटरी डिस्चार्ज। डरना चाहिए कि मुझे विकल्प आ रहा हो, नो विकल्प। थर्ड स्टेज है व्यर्थ अतीत, ये ज्यादा जो व्यर्थ है ना जाता है समय बेस व्यर्थ जाता है उससे भी परे हो जाना चाहिए। बाबा भी कहते हैं बच्चों में विकल्प नहीं है, विकर्म भी नहीं होता होगा, लेकिन व्यर्थ अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। अब व्यर्थ नहीं जगवाना, वो व्यर्थ के जब बैठा हूं मैं कोई काम नहीं कर रहा, वो याद करो। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बनो, ये पुण्य तो हम सभी कर सकते हैं, गरीब है, अमीर है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई भी है, ये तो काम कर सकता है ना। वो मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ये शुद्ध संकल्पों का खजाना तो जमा हो सकता है ना। हम तो करते रहते, कोशिश करते हैं। विकल्पाजीत व्यर्थ अतीत, और बाबा कहता है बच्चे अब तो और आगे चलो, साधारण अतीत हो जाए। आपका कोई भी संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए, साधारण से भी परे होना चाहिए, विशेष संकल्प हो। हम तो बाबा मम्मा का, बाबा का जो था, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष था, साधारण नहीं था, बिल्कुल विशेष। बाबा किसी को देख लेंगे ना, ऐसे दृष्टि देंगे, उड़ जाते थे। किसी पर ऐसे हाथ रख दिया, वो खुशी से फूला नहीं समाता था, बड़ी खुशी होती थी। बाबा का हर एक्शन, हर एक बात विशेष थी। तो हमें अगर बाप समान बनना है तो हम सभी को भी हमारा हर कर्म, हर बोल, हर बड़ा संकल्प हर साधारण ना हो, विशेष होना चाहिए। अब वो विशेष कैसे होगा, जब हम इन्हीं शुद्ध संकल्पों में रमन करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे। हम याद करते हैं ना बिंदु बन बिंदु को, तो याद करना ही है, वो अच्छी बात है, हम भी करते हैं, आप भी सब करते होंगे, परंतु उससे भी बाहर आके हम और नहीं कर सकते। शुद्ध संकल्पों में रमन तो करें, वो तो करें, क्योंकि पॉजिटिव संकल्पों से क्या मिलता है, एक पावर आती है, एक प्योरिटी आती है, दो चीजें आती है, पावर एंड प्योरिटी। सत्य में क्या चाहिए, दो चीजें, क्राउन ऑफ पावर एंड क्राउन ऑफ प्योरिटी, दो लक्ष्मी नारायण बन जाती है। उनमें क्राउन ऑफ पावर भी है, क्राउन ऑफ प्योरिटी भी है, वो ये पॉजिटिव संकल्पों के संकलन से ही आती है। लगातार आप सोचते रहिए, शुद्ध शुद्ध सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, और कोई साधारण संकल्प ना आए। भाई हम तो कोशिश करते हैं, अगर और कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं ना, सिंपल पुण्यात्मा बन सकते हैं। उससे क्या आप खुद भी प्योर बनेंगे, वातावरण को भी प्योर बनाएंगे, प्रकृति को भी प्योर बनाएंगे, इसी शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन से। और बाबा ने शुद्ध संकल्प दे दिया, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सहज बात बाबा कहते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कहते, सिंपल पुरुषार्थ करो, सदा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये बुद्धि में रहे। अब देखो बाबा क्या कहते हैं कि ये अशरीरी बनो, कैसे बनेंगे, आत्माभिमानी बनो, कैसे बनेंगे। देखो पहले दुनिया कहती थी, अभी कहती है जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ये कहते हैं ना। एक बाबा ने कहा है कि जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। जब तक आप सोचोगे नहीं मैं आत्मा हूं तो अशरीर कैसे बनेंगे। इस प्रकार से ये पुरुषार्थ करके हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आगे बने, अपने को बदले हैं, और प्रकृति को बदले, दुनिया का बदलो, श्रेष्ठ बने, और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो सत्य कोई दूर नहीं, जल्दी है, आने वाला है, उसमें हम सब इकट्ठे मिलकर चलेंगे। बस बहन जी, ओम शांति, ओम शांति।
मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने। Yeah.